पर एक दिन उस पड़ोसी के घर में किसी ने चोरी कर ली और उसका इल्ज़ाम उन्होंने मुझ पर लगा दिया कि मैंने अपनी पागल माँ का इलाज करवाने के लिए उनके हार को चुरा लिया है। मैंने मिन्नत की, पैरों में गिरा, उनके सामने नाक भी रगड़ी कि मैंने चोरी नहीं की है, पर उन्होंने मेरी एक बात नहीं मानी और मुझे बिना कपड़ों के धूप में ही खड़ा कर दिया था। मैं 13 साल का मासूम बच्चा ही तो था। कड़ी धूप में बिना कपड़ों के अपने हाथों को ऊपर किए हुए मैं अपनी सज़ा भुगत रहा था, पर किसी ने मुझ पर दया नहीं दिखाई थी। वो अपमान आज भी मुझे याद है। मुझे काम से निकाल दिया गया, लेकिन रोटी के लिए कुछ तो करना पड़ता ना, इसलिए मैंने होटल में काम करना शुरू कर दिया। पर धीरे धीरे मेरी माँ की हालत बिगड़ती जा रही थी। एक बार मेरी माँ की हालत इतनी बिगड़ गई कि उन्होंने प्रीति को पालने से उठाकर फेंक दिया था। पड़ोसियों ने ये सब देख लिया और उन्होंने पागल खाने वाले को फ़ोन कर दिया था। मेरी माँ रो रही थी, चिल्ला रही थी और उन्होंने रोते हुए ही शारदा देवी को कोसना शुरू कर दिया। जब मुझे अपनी माँ की हालत के बारे में पता चला तो मैं दौड़ा दौड़ा घर आया, पर जैसे ही मैं घर पहुँचता हूँ तो देखता हूँ पागल खाने की गाड़ी मेरी माँ को ज़बरदस्ती खींचते हुए ले जा रही है और मेरे भाई बहन को एक पड़ोसी ने संभाल रखा है। मैं अपनी माँ को बचाने के लिए आगे जाता हूँ, लेकिन मुझे उन तक जाने नहीं दिया जाता है। मैं देख सकता था मेरी माँ कैसे असामान्य व्यवहार कर रही हैं। वो जोर जोर से अपने बालों को खींच रही हैं और शारदा देवी को गालियाँ दिए जा रही हैं कि उस डायन ने मेरा घर बर्बाद कर दिया है, उस डायन ने मेरी ज़िंदगी बर्बाद कर दी है। मैं उसे छोड़ूंगी नहीं, वो नरक में जाएगी, उसने मुझसे मेरा सब कुछ छीन लिया है। 4 महीने, पूरे 4 महीने तक मेरी माँ पागल खाने में ही रही थी और उनका इलाज चल रहा था। इन 4 महीनों में मुझे होटल में काम करना पड़ा, पड़ोसियों के घर में नौकर का काम करना और सुबह सुबह उठकर न्यूज़पेपर बांटना। मैंने 4 महीने तक यही काम किया। जब मेरी माँ एक दिन वापस आ गई तो उनकी हालत पहले से ज़्यादा सही थी और उन्हें कोई दौरे नहीं पड़ते थे। मेरी माँ ने हम सबको लेकर एक सामान्य जीवन जीने की कल्पना की थी। उन्होंने मुझे फिर कोई काम करने नहीं दिया। उन्होंने मुझसे कहा कि मुझे पढ़ाई करनी है और जीवन में कुछ बनना है, इसलिए मैं और प्रणाली पास की ही सरकारी स्कूल में जाते थे और मेरी माँ एक नाइट क्लब में काम करने लगी। जिंदगी मुश्किल जरूर थी, लेकिन हम सब एक साथ थे इसलिए जिंदगी आसान लग रही थी। हमारे सर पर हमारी माँ का साया था और वो बहुत मुश्किल से हमारे साथ खुश रहने की कोशिश करती थी, पर जैसा भी था दिन अच्छे गुजर रहे थे। इसी बीच हमने अपनी माँ को खो दिया। तभी आस्तिक का चेहरा गुस्से से भर जाता है और वो एक झटके से अपनी आंखें खोलते हुए कहता है, नहीं नहीं है, मेरी माँ ने खुदकुशी नहीं की थी, उनकी हत्या हुई थी, उन्हें मारा गया था। अरे वो तो अपने बच्चों के साथ संघर्ष के साथ जीवन बिता रही थी, लेकिन किसी से शायद उनका ये संघर्ष भी नहीं देखा गया और उसने मेरी माँ की जान ले ली है। अब तुम्हारी बारी है शारदा देवी, मैं इंतजार करूंगा तुम्हारे पागल खाने से वापस आने का। अभी तक तो सिर्फ ट्रेलर था कि फिल्म तो अभी बाकी है। 3 दिन बाद, राजा साहब रहम कीजिए, इतनी कठोर मत बनिए, माँ पागल खाने में है, मिश्री कहाँ जाएगी, प्लीज उसे हमारे घर पर रहने दीजिए, वो एक छोटी बच्ची ही तो है, आप उसके साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं। अरुणिमा आस्तिक के पैरों पर गिरते हुए गिड़गिड़ा रही थी। आस्तिक बिना किसी एक्सप्रेशन के चुपचाप अपनी कॉफी पिए जा रहा था और अखबार पढ़ रहा था, जैसे उसे इन सब से कोई मतलब ही नहीं था। अरुणिमा आस्तिक के पैरों पर बैठकर उसे मिश्री को अपने साथ रखने की भीख मांग रही थी। आस्तिक को समझाने की कोशिश कर रही थी कि मिश्री का उसके अलावा इस दुनिया में कोई भी नहीं है और इस वक्त मिश्री को उसकी जरूरत है, लेकिन फिलहाल आस्तिक अरुणिमा की बातों को पूरी तरह से नज़रअंदाज कर देता है। वो अपनी जगह से खड़ा होता है और चुपचाप कबर्ड की तरफ पढ़ने लगता है, जैसे कि अरुणिमा की बातों का उसकी जिंदगी में कोई महत्व ही नहीं है। इससे पहले कि आस्तिक कबर्ड से अपने कपड़े निकाल पाता, अरुणिमा उसके सामने आ गई और अपने हाथ जोड़ते हुए कहने लगी, राजा साहब मैंने कहा ना मैं आपकी हर बात मानूंगी, प्लीज आप मेरी बहन को यहाँ रहने दीजिए, वो घर के कोने में पड़ी रहेगी, आपको नजर भी नहीं आएगी। इस बार आस्तिक ने एक उबासी लेते हुए अरुणिमा को देखकर कहा, ठीक है रख लो अपनी बहन को अपने पास। अरुणिमा के चेहरे पर चमक आ जाती है, वो अपने आंसू पोंछती है और खुशी से कहती है, धन्यवाद धन्यवाद राजा साहब, बहुत बहुत धन्यवाद। अरुणिमा दरवाजे की तरफ बढ़ने वाली थी कि तभी आस्तिक कहता है, सर्वेंट क्वार्टर्स साफ करवा देना जहाँ तुम्हारी बहन रहेगी। अरुणिमा हैराली से आस्तिक को पलट कर देखने लगती है, उसे आस्तिक के कहे शब्दों पर यकीन नहीं हो रहा था। वो मिश्री की बात कर रहा है, अरुणिमा की बहन की, और वो उसे सर्वेंट क्वार्टर में रखने की बात कैसे कर सकता है। अरुणिमा ने हैरानी के भाव से कहा, वो मेरी बहन है, आप ऐसा कैसे कर सकते हैं उसके साथ, अभी उम्र ही क्या है उसकी। आस्तिक अपने मन में अरुणिमा को देखते हुए कहता है, मेरी भी तो कोई उम्र नहीं थी ना जब मैंने अपने जीवन में संघर्ष करना शुरू किया था, मेरी भी तो वो उम्र नहीं थी किसी के घर में मार खाकर काम करने की। एक एक रोटी के लिए मैंने अपने जीवन में संघर्ष किया है, वो भी तब जब तुम लोग ऐशो आराम से एसी और पंखे के नीचे बैठे हुए थे, मैं तपती धूप में गाड़ियों में सामान उठाया करता था। आस्तिक ने बेफिक्री के साथ कहा, ठीक है अगर ये नहीं करना है तो फिर अपनी बहन को किसी झुग्गी झोपड़ी में छोड़ाओ, मेरा घर कोई खैराती खाना नहीं है। अरुणिमा अपने आंसू पोंछते हुए कहती है, नहीं राजा साहब, मैं उसे सर्विस क्वार्टर में ही रख देती हूँ। भले ही सर्विस क्वार्टर में रहेगी, पर रहेगी तो मेरी आंखों के सामने ही। मिश्री इस वक्त अपने छोटे से कपड़े की पोटली लिए महल के दरवाजे के पास खड़ी थी। अरुणिमा मिश्री को अफसोस के साथ देखती है तो मिश्री मुस्कुराते हुए अरुणिमा को देखकर कहती है, दीदी आप फिक्र क्यों कर रही हैं, मैं ठीक हूँ। अरुणिमा का मन कर रहा था कि वो जोर जोर से अपनी बहन से लिपटकर रोने लगे, पर उसके आंसू रुकने का नाम भी तो नहीं ले रहे थे। मिश्री अरुणिमा को गले लगाते हुए कहती है, दीदी आप फिक्र मत कीजिए, वैसे भी पृथ्वी भैया ने कहा है ना, माँ जल्दी ठीक हो जाएगी, और जैसे ही माँ ठीक हो जाएगी हम लोग यहाँ से चले जाएंगे।